Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. आज के प्रमुख समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे बीच आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एस पी शर्मा. नमस्कार डॉक्टर शर्मा, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अर्जुन चौधरी.
Benchmark domestic stock market indices rise over 1.5%. Sensex surges over 1,200 points. Nifty settles above 24,200. India's wholesale inflation climbs to 3.88% in March this year. And global crude oil prices rise.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 1.5% से अधिक के उछाल में रहे. सेंसेक्स 1,200 से अधिक अंकों के उछाल पर बंद हुआ. निफ्टी 24,200 के ऊपर जा पहुंचा. भारत की थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर इस वर्ष मार्च में बढ़कर 3.88% पर दर्ज हुई और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई वृद्धि.
And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अर्जुन, आइए अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर, जहां प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज 1.5% से अधिक के उछाल पर बंद हुए. सेंसेक्स 1,264 अंकों की वृद्धि से 78,111 पर बंद हुआ और निफ्टी 389 अंकों की बढ़त से 24,231 पर दर्ज हुआ. अमेरिका और ईरान के बीच फिर से कूटनीतिक बातचीत की आशाओं के बीच वैश्विक बाजारों में आई तेजी के अनुरूप भारतीय बाजार बढ़त के साथ खुले थे. इस आशावाद के चलते सभी क्षेत्रों में चौतरफा खरीदारी हुई, जिसके बल पर पूरे सत्र में दोनों सूचकांकों में सकारात्मक गति बनी रही.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रोज ओवर 1.5% टुडे. Sensex climbed 1,264 points to close at 78,111 and Nifty added 389 points to settle at 24,231. Earlier markets opened higher, tracking gains in global equities amid hopes of renewed diplomatic engagement between the United States and Iran. This led to broad-based buying across sectors, enabling both stock market indices to sustain their positive momentum throughout the session.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 28 के शेयर आज तेजी में रहे. सबसे अधिक बढ़त वाले शेयर थे 4.6% उछाल के साथ इंडिगो. एटोनल का शेयर लगभग 4.4% बढ़ गया और पावर ग्रिड के शेयर में 4.1% का उछाल आया. लेकिन भारतीय एयरटेल के शेयर में 0.6% से अधिक गिरावट आई और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 0.2% के नुकसान पर बंद हुआ.
Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 25 sectors registered an upward move. Among the top gainers, services surged 3.3%, focused IT rose 3.1% and industrials advanced 2.9%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 3,585 companies advanced, 802 companies declined and 126 companies remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 93 रुपए 38 पैसे के स्तर पर स्थिर बना रहा. छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.24 पर था। डॉक्टर शर्मा, बहुत ही अच्छा दिन है शेयर बाजार के लिए, हमने एक 1200 अंकों की उससे अधिक तेजी देखी है सेंसेक्स में। कल हालांकि बाजार बंद थे, लेकिन मंडे को हमने 700 अंकों की गिरावट देखी थी, तो ये जो बाजार संभला है और इतना उत्साहित दिखाई दे रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या है?
जी बिल्कुल सोनू जी, जो बाजार में बढ़त है बहुत ही पॉजिटिव है, और लगभग कोई अप्रैल में ही 7-8% से बाजार जो है बढ़ चुका है। जो मार्च में काफी करेक्शन देखी तो अप्रैल में थोड़ा बढ़ोतरी का रुख देखा गया है। मेजरली जो यूएस और ईरान में जो वार्तालाप है वो कंटिन्यू है, मैं ये कहूंगा उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट तो आना जरूर बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक वार्तालाप हो रही है वही मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव बना हुआ है। तो मार्केट्स को इस टाइम पे एक स्टेबिलिटी चाहिए, जो अभी के जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उनसे एक स्टेबिलिटी मिल रही है, एक तो ये वार्तालाप की वजह से, और दूसरा जो क्रूड प्राइसेस में एक बहुत एस्केलेशन के जो चांसेस थे वो डिम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्रूड अभी लगभग कोई $100 के आसपास ही होवर कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, जो आईएमएफ के जो एस्टिमेट्स आए हैं वो भले ही कम कर दिया है 3.3 से 3.1 कर दिया है, लेकिन कोई मेजर गिरावट जीडीपी में देखी नहीं गई, और खास करके जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुआ है।
जी,
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ऐसी डेवलपमेंट्स में, जब ऐसी हेडविंड्स में, जब ग्लोबल ग्रोथ ही डिसेलिरेट कर रही है, तो इंडिया का ग्रोथ रेट अपग्रेड करना एक बहुत बड़ी बात है, जो 6.4 से 6.5 कर दिया गया। और इसके अलावा जो एक इन्फ्लेशन, जो हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई नंबर्स हैं, वो उतने, मैं ये कहूंगा कि सीधे भाषा में, इतने खतरनाक नहीं है कि जितने पहले, जिससे पहले आशंका थी कि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा सकता है। तो कुल मिला के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, डोमेस्टिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, और दूसरा स्टेबिलिटी इन दी इंडिया, ईरान और यूएस स्टॉक्स में जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसी की वजह से मार्केट्स में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रुख बना हुआ।
आपने आईएमएफ की बात की, वर्ल्ड बैंक ने भी जो एस्टिमेट्स हैं उनको बढ़ा दिया है 30 बेसिस पॉइंट से, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 40 बेसिस पॉइंट से भारत के ग्रोथ एस्टिमेट को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जबकि सभी ने जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको लेकर काफी चिंता जताई है। सो जो स्वीट स्पॉट का हमारा एक स्थान था वो अभी भी बना हुआ है?
जी बिल्कुल बरकरार है, और ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया है कि इतना ग्रोथ जो है हमारा इंडिया का रहेगा, और हमारे जो अपने एस्टीमेट हैं वो तो लगभग कोई 7% के आसपास है। आरबीआई ने अपना 6.9% का ग्रोथ रेट दिया है, विच इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले टाइम में जो भारत की रफ्तार है, जो एक तेज गति है, वो बरकरार रहेगी।
शर्मा जी, इफ यू लुक एट व्हाट इज ड्राइविंग वैल्यूएशंस इन द मार्केट टुडे, स्पेसिफिकली द सेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, वी सॉ इट गो अप बाय 3.1 और 3.2%। फंडामेंटली स्पीकिंग दिस इज द फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स सीजन, एंड व्हाट वी कैन सी इज दैट ऑलरेडी 25 रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन दिस सीजन। टुमारो विप्रो इज गोइंग टू बी declaring their results. TCS had declared the results earlier. Do you expect the results to be good? Because these are bellwether stocks that tend to drive stock market valuations. And more importantly, all these IT companies are now AI driven, artificial intelligence driven in terms of their earnings, and they're earning in foreign exchange.
Yes, Arjun, because there are a lot of developments in the international market, number one. Number two, information technology was most impacted during the March month or the crisis time or the Trump tariffs or thereafter the West Asia crisis. But now with the earnings season and some expectations of the recovery are providing a great strength to the IT sector. And going forward, I believe the rational expectations like the numbers will be average somewhere between 15-20% earnings for this quarter. That will provide a strong support to the information technology and overall market developments.
Provisional data suggesting that in the equity market, the FIIs were the net buyers today and the DIIs were booking their profits. Will this trend continue?
Yes, because DIIs are the major buyers of the स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट लास्ट ईयर इन 24-25 एंड 25-26 बट एफ आई आईज वर सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस such kind of challenges at the global market. But now, at the lower valuations, they have again started buying the equities for the long-term gains. So, our market is strong, supported by the DIIs and particularly the retail investors. They are the major participants of the market in the recent years. So, I believe the volatility because of the FIIs is now diminishing. Our market is becoming self-reliant with the support of the DIIs and the domestic buyers, domestic investors. So, going forward, I believe we have a great strength in our market on the basis of our strong economic fundamentals and our markets will remain resilient in such a crisis of West Asia.
आपने अभी वैल्यूएशंस की बात करी थी सो काफी जब हमारा बाजार यू नो 83-84 के लेवल्स पे जा रहा था 83-84,000 सेंसेक्स का लेवल सो कहा जाता था कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है बहुत ओवर प्राइस्ड हो गया है बाजार अभी जो लेवल्स है अभी वैल्यूएशन को लेकर अभी क्या स्थिति है और आपकी जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एडवाइस क्या होगी अभी करंट सिचुएशन में
देखिए वैल्यूएशंस काफी लुक्रेटिव हैं और दूसरा जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए एडवाइस ये होता है कि दे शुड इन्वेस्ट इन दी स्टेप्स उनको स्टेप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ना कि एक ही बार में एक ही जो एसआईपी है आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट क्योंकि एक ही बार में मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रह सकती हैं अभी हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा कल जो वार्तालाप होगी वो किस तरफ जाएगी तो मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल और भी रह सकती हैं तो इसी संदर्भ में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको सोच समझ के ही पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो तब तो ठीक है लेकिन अगर वो शॉर्टर टर्म में कुछ गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि मार्केट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रह सकती हैं अभी वार्तालाप हो रही है लेकिन वार्तालाप किस रुख में जाएगी वो हमें कुछ भी मालूम नहीं
है डॉक्टर शर्मा व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल्स वी आर लुकिंग एट द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वेदर लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप एंड दिस शार्प करेक्शन बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस हैज एक्चुअली थ्रोन एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू बाय इनटू द मार्केट इंडिपेंडेंट of the mutual fund schemes as well. Which are the sectors you feel that at a fundamental level there is going to be uptick in its valuation and which are the growth sectors that you see right now because a lot of this has already been bought in, one gets a feeling.
Yes, Arjun, because India is a growth story. So I believe every sector is promising of the Indian economy. But as our dream is to become a Viksit Bharat, our aspirations are to become Viksit Bharat by 2047. So now every road goes to Viksit Bharat. So we have to support the infrastructure. So infrastructure is a great lucrative sector for the investors. So followed by the energy. Energy is in a great demand. So energy is also very, very promising. And thereafter, the other manufacturing sectors like the textiles and the pharmaceuticals. All sectors are very, very promising of the Indian economy. And we have observed a great strength in the exports also. As our exports are resilient, we are growing. Despite many headwinds, our exports are in the positive trajectory. So, I believe sectors are very, very promising. Sectors are very, very strong on the basis of strong economic fundamentals. So, but the challenge is the time for investment. They should not be investing in a single go. There must be steps. And SIP is the best way to...
And very, very briefly, जैसे पहले होता था कि जब भी कोई अनसर्टनिटी है तो आप डिफेंसिव सेक्टर्स में जाइए वो डिफेंसिव सेक्टर्स का कॉन्सेप्ट IT, फार्मा, FMCG, अब वो काफी हद तक खत्म हो चुका है
देखिए अभी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपको किसी भी वॉलेटिलिटी में एक पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा जैसे पहले हम देखते थे कि जब मार्केट्स में करेक्शन आती थी तो कई बार आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव्स में होते थे या फार्मा तो अभी सभी सेक्टर्स जो है वो वॉलेटाइल होते हैं लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बाद में हमने देखा है कि जैसे ही कोई बड़ी तेज गिरावट आती है तो उसके बाद एक तेज रिकवरी भी होती है
एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द बैंक निफ्टी दैट वेंट अप बाय 1.25% द इंडेक्स वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स टुडे डू यू सी दिस एज बोथ ए फंडामेंटली साउंड sector and a growth story as well.
Yes, Arjun, because banking is our backbone of the Indian economy. Without banking, we can't move ahead. So when the economy grows, your banking sector also grows significantly to support the economy, to provide the monetary scenario, banking scenario to the people, to the investors, to the businesses. So that is natural. That when the economy or our stock market grows significantly, then the banking sector also follows the same league.
So you expect credit to actually go up?
Yes, yes, sir.
अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अधिकांश एशियाई बाजारों में आज बढ़त जारी रही. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 2.1% के उछाल पर बंद हुआ. जापान का निकेई 225.4% से अधिक बढ़ गया और हांगकांग के हैंगसेंग और सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स सूचकांक प्रत्येक में लगभग 0.3% वृद्धि दर्ज हुई. हालांकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक बिना किसी बदलाव के बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां मिला जुला रुख था. जर्मनी का डैक्स और लंदन का फुटसी 100 दोनों में 0.1% से अधिक वृद्धि चल रही थी, लेकिन फ्रांस का कैक 40 0.3% से अधिक के नुकसान पर था.
जस्ट ब्रीफ अबाउट द एशियन करेंसीज लाइक द जापानीज येन व्हिच हैज एक्चुअली डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर. US dollar has been strengthening, but today, of course, on the US dollar index, the US dollar is actually at 98. Earlier, it was cross 100. Right. Do you see a cheaper yen and a borrowing in yen actually benefiting the US stock market right now? And more importantly, how do you see the US dollar vis-a-vis the Asian currencies? Because a lot of it is linked to how gold is priced and how the US dollar is also priced.
Arjun, I think that will be depending upon the developments in the US-Iran talks shortly, day after tomorrow or in the coming times. If the talks are positive, there is some peaceful resolution of this war, then I believe dollar will weaken in the coming times. That will benefit the currencies of the emerging markets for their stability. But if the talks are not in a positive trajectory, then the dollar can become strong again and impact the or undermine the performance of the emerging markets.
Let's have a look at the US stock market now. Major US stock market indices ended higher yesterday on optimism about the prospects for a resolution in West Asia, while investors also assess the latest batch of bank earnings and US inflation readings. NASDAQ Composite Index climbed almost 2%, S&P 500 surged 1.2%, and the Dow Jones Industrial Average also rose nearly 0.7%. On the economic front, producer prices increased less than expected in March, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. The PPI, the Producer Price Index, remained unchanged at 0.5% last month, as the cost of services was flat. On an annual basis, the index for final demand rose 4% in March, marking the largest 12-month advance since increasing 4.7% in February 2023. The U.S. economy appears to be a conundrum. They don't appear to be affected by what's happening in West Asia, even though the U.S. dollar has actually gone up in valuation. Today, of course, the index has come down. But more importantly, inflation for them is relatively stable. Producer price index at 0.5%. And what is this index for final demand, which has actually risen by 4%?
Yes, that is indicating that in the coming times, the inflation can go up. And second, their growth is now decelerating. IMF has reduced the growth from 2.4 to 2.3%. Already growth was fragile at 2.4% because US was growing more than 3% in the normal years. So I think that is a great challenge for the US economy, because growth is decelerating and the prices are going up. So that will challenge the dollar also in the coming times, and their monetary policy stability to move forward and to become again strong in the global marketplace.
अब लौटते हैं भारतीय परिवेश में. भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष मार्च में वार्षिक आधार पर बढ़कर 3.88% हो गई, जो फरवरी में 2.13% थी. मासिक आधार पर WPI फरवरी के 0.38% की तुलना में बढ़कर 1.64% हो गया, जो इनपुट लागत के दबाव में वृद्धि का संकेत देता है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता पता चलता है कि पिछले महीने मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अन्य विनिर्माण गैर खाद्य वस्तुओं, बुनियादी धातुओं के विनिर्माण और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण है। प्रमुख श्रेणियों में प्राथमिक वस्तुओं की वार्षिक मुद्रास्फीति दर फरवरी के 3.27% से बढ़कर 6.36% हो गई। डब्ल्यूपीआई बास्केट में सबसे अधिक योगदान वाले विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति मार्च में 3.39% दर्ज की गई, जो पिछले महीने के 2.92% से अधिक है। गौरतलब है कि ईंधन और बिजली क्षेत्र में 1.05% की मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जिससे पिछले महीने में देखी जा रही डिफ्लेशन की प्रवृत्ति उलट गई। खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों वाला थोक खाद्य सूचकांक 1.85% पर अपरिवर्तित रहा। तो डब्ल्यूपीआई में 1.75% की बढ़त आई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और खासकर सीपीआई में जैसा हम बात कर रहे थे कि सिर्फ 0.2% की बढ़त आई है, सो क्या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बियर कर रहे हैं जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं, और अभी जो रिटेल कीमतें हैं उनको नियंत्रित रखा हुआ है, कैसे इसको हम इंटरप्रेट करें?
देखिए सोनू जी, इसमें जो एक मेजर डेवलपमेंट है, पहला तो ये कि डब्ल्यूपीआई काफी सालों के बाद, मैं ये कहूंगा काफी अरसे के बाद, जो है सीपीआई से ऊपर निकला है
जी।
पहले ये सीपीआई से काफी नीचे ही रहता है, काफी अंतर रहता है, काफी डाइवर्जेंस है। तो अभी कारण ये है कि सरकार ने जो बोझ अपने ऊपर ले लिया है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो क्रूड के प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए फिर भी वो पास ऑन नहीं हुए, तो एक कंजम्पशन ट्राजेक्टरी को सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ हुआ, जिससे कि जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो अभी भी बेनाइन कंडीशन में हैं। जो हम कहेंगे कि सीपीआई इन्फ्लेशन इज एट 3.4, नाउ द डब्ल्यूपीआई इज हायर देन द सीपीआई। सो इससे क्या इंडिकेशन हो रहा है कि दो जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन हैं प्रोड्यूसर्स के वो इम्पैक्ट होंगे, उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, तो जो उनके प्रॉफिट्स को आगे इम्पैक्ट कर सकती है।
लेकिन ये सिचुएशन होती है,
ये सिचुएशन काफी समय तक नहीं चलेगी। आई थिंक दिस इज शॉर्ट लिव्ड। आने वाले टाइम में जैसे अभी क्रूड के प्राइसेस स्टेबल होने शुरू हो गए हैं, जो वार्तालाप हो रही है, तो अगर ये वार्तालाप पॉजिटिव हो जाती है तो वो काफी डिसेलिरेट होंगे, लगभग कोई उसी स्थान पे आ जाएंगे जहां पे हमने 2 महीने पहले देखा था। तो जिससे कि डब्ल्यूपीआई फिर दोबारा से वापस उसी ट्राजेक्टरी में आ सकता है जो आज के 2-3 महीने पहले होता था। तो हमें थोड़ा वॉच करना होगा, वेट एंड वॉच, जैसे एक आरबीआई का भी यही एक जो पॉलिसी आई है तो उसमें यही बोला गया कि हमें देखना होगा कि क्या आने वाले टाइम में जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, वो किस तरह की शेप लेती
है। इन मोर न्यूज, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कंबाइनिंग मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज इंक्रीज बाय 4.22% टू ओवर $860 बिलियन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। हाउएवर, imports rose at a faster pace of nearly 6.5% to around $979 billion. This led to a widening of the overall trade deficit to $119.3 billion in the last fiscal from $94.66 billion in the fiscal year 2025. According to the provisional data released by the Commerce Ministry, the cumulative value of merchandise exports rose by 0.93% to around $441.8 billion during financial year 2026. As per the data, major drivers of merchandise exports growth during the last fiscal were cereals, electronic goods, meat, dairy and poultry products, coffee and marine products. Meanwhile, services exports continue to remain strong, rising to $418.31 billion. You earlier talking about the earnings of IT companies and how they're driving the stock market performance. But just looking at merchandise exports, India is a US is a favored destination. Do you see with the drop in Chinese exports to the US by 20%, India will continue to earn favorably from exports to the US? And will a 10% tariff by the Supreme Court ruling still stand, or do you see Trump intervening?
Yes, Arjun, I totally agree with you, because despite the headwinds, we are growing at 4% in our overall export trajectory, including the merchandise and services. Services export growth is higher than merchandise, and I think this is rational export growth. Despite the headwinds, we are growing in a positive trajectory. Yes. With the challenges from the Trump tariffs for many months. So going forward, we have a great expectation that our exports are diversified towards the other markets, because Indian products are in a great demand in the other countries like Latin America or the Europe. We have free trade agreements with many countries, and a lot of demand is happening in the ASEAN countries. Now, I don't see that our exports are going to impact in the coming times because of the West Asia war, because we have alternatives in the many other markets, and I believe the exports will remain intact in the current financial year also. And yes, IT is a great support. Our services exports are becoming strong and moving significantly higher than the merchandise exports.
In more news, country's unemployment rate for persons aged 15 years and above rose slightly to 5.1% in March from 4.9% in February this year. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation monthly labor force and unemployment data, the rural unemployment rate advanced to 4.3%, while urban unemployment edged up to 6.8% last month from 6.6% in February.
उधर दूरसंचार विभाग डॉट ने प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और निवेश संबंधी घोटालों में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके आज एक रणनीतिक साझेदारी की. संचार मंत्रालय ने कहा कि ये सहयोग भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल निवेश परिदृश्य के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है. समझौते के हिस्से के रूप में दूरसंचार विभाग बहुआयामी विश्लेषण के माध्यम से संदिग्ध पैटर्न से जुड़े मोबाइल नंबरों की पहचान करने में मदद करने के लिए सेबी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर साझा करेगा. और अब चलते हैं अगली खबर की ओर. पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने देश भर में घरेलू एलपीजी की शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की है. आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ रजनीश ने बताया कि वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 20 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम हैं जिन्होंने फरवरी और मार्च के महीने में मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है.
Moving on to the crude oil market, global crude oil prices rose today as constrained supply flows through the Strait of Hormuz outweighed expectations of renewed US and Iran talks. Brent crude was trading 0.7% up at $95.44 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 0.4% up at $91.56 per barrel when reports last came in. Very briefly, 34 ships have allowed through the Strait of Hormuz. U.S. markets are very positive. Will that continue? Very briefly.
I think some positive signs are coming, and crude prices will be in a rational mode in the coming times and can stable in the coming times.
Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.3% down at 1,54,630 rupees per 10 grams, while silver was trading nearly 0.7% down at 2,51,840 rupees per kilogram a short while ago.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक जून अनुबंध वाला सोना 0.3% की गिरावट से 1,54,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और मई अनुबंध वाली चांदी लगभग 0.8% की गिरावट से 2,51,801 रुपए प्रति किलो पर थी. ब्रीफली बता सकते हैं कि मीडियम टर्म में और इमीडिएटली क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं सोने और चांदी का?
देखो, इमीडिएटली तो शॉर्टर टर्म में थोड़ा रेंज बाउंड रहेंगे, क्योंकि पहले काफी स्पाइक आए दोनों में ही, अभी एक ग्रेट करेक्शन भी देखी गई, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म द प्राइसेज आर सीन वेरी स्ट्रांग.
घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शर्मा, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी.
जी, थैंक यू सोनू जी एंड अर्जुन जी.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise over 1.5%. Sensex surges over 1,200 points. Nifty settles about 24,200. India's wholesale inflation climbs to 3.88% in March this year. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.